अचानक रुद्र के कॉल आने पर आयु को जल्दबाजी में ओबेरॉय फार्महाउस के लिए निकलना पड़ा। जयजी और ज्ञानजी की बहस हो गई थी और उसके बाद ज्ञानजी वहां से जाने की जिद पर अड़े हुए थे। रुद्र को इस वक्त आयु के अलावा और किसी का नाम समझ नहीं आया जो ज्ञानजी को समझा सकता था, इसीलिए उसने आयु को बता दिया। दोनों बच्चों को आरव के भरोसे छोड़कर आयु फार्महाउस के लिए निकल गई। आयु के जाने के बाद आरव आयु के सूट में गया। दोनों बच्चे अभी भी सोए हुए थे। आरव ने उन्हें देखकर कहा, इन दोनों की कुछ हरकतें बिल्कुल इनकी मॉम की तरह हैं, ऐसे सो रहे हैं जैसे दुनिया खत्म हो गई हो। आरव उनके पास गया और उनके मुंह पर पानी के छींटे मारे। आर्या के लिए ये सब कुछ नया नहीं था क्योंकि पहले भी आरव उसे जगाने के लिए ऐसे ही हरकतें करता था, लेकिन आरिशा उठकर आरव को घूर कर देखने लगी। दिस इज रियली बैड मिस्टर खुराना, मॉम बिल्कुल ठीक कहती है, आपकी हरकतें उल्टी सीधी ही होती हैं, आरिशा गुस्से में बोली। आरव ने उसकी तरफ मुस्कुराकर देखा और फिर उसे गोद में उठाते हुए कहा, मैं तुम्हारा डैड हूँ, किसी भी नाम से बुलाओ, पर मिस्टर खुराना कहकर बिल्कुल नहीं, इतना इनफॉर्मल कौन रहता है, ये लंदन नहीं है, इंडिया है। आरिशा को गोद में उठाने के बाद आरव ने अपने दूसरे हाथ से आर्या को भी थाम लिया था। आरव ने उन दोनों से कहा, हमें अर्जेंटली कहीं के लिए निकलना होगा आरिशा, तुम्हारे कपड़े कहाँ रखे हुए हैं, लाओ मैं तुम्हें चेंज करवा देता हूँ। आरिशा ने रूम के स्टोर रूम की तरफ इशारा किया। आरव आरिशा को बाथरूम में लेकर गया और फिर उसका मुंह धोने के बाद उसके कपड़े चेंज किए। आरव आरिशा के बालों को काफी प्यार से बना रहा था। उसने आरिशा की तरफ आईने में देखा तो उसकी आंखें नम हो रही थीं। ये उसके लिए बहुत इमोशनल मोमेंट था और उसने कभी नहीं सोचा था कि उसकी बेटी उसे वापस मिलेगी या वो उसे कभी इस तरह पैम्पर भी कर पाएगा। आरिशा ने अपने बालों को आईने में देखने के बाद कहा, डैड आपने हेयर क्लिप्स गलत जगह पर लगाई हैं, आपको कुछ नहीं आता है। कोई बात नहीं बेटा, धीरे धीरे सीख जाऊंगा, आरव ने हल्का मुस्कुराकर कहा। आरव उसकी क्लिप्स को सही करता उससे पहले आर्या आया और उसने आरिशा को बिठाकर कहा, रुको मैं सही करता हूँ। आर्या क्लिप्स सही करते हुए बोला, तुम गर्ल हो ना और डैड बॉय, इस वजह से उन्हें पता नहीं चल रहा, बाकी वो मुझे अच्छे से रेडी करते हैं। क्लिप्स सही करने के बाद आर्या ने आरव की तरफ देखकर पूछा, अब सही है ना डैड? आरव ने बिना कुछ कहे हाँ में सिर हिला दिया। उसके बाद वो आरिशा और आर्या के साथ अपने सूट में आया। आरिशा को तैयार करने के बाद उसने आर्या को चेंज करवाया। बाहर निकलने से पहले आरिशा ने पूछा, वैसे हम कहाँ जा रहे हैं डैड? तुम्हारी मॉम के पास, आरव ने इतना ही कहा और फिर दोनों बच्चों के हाथ पकड़कर उन्हें लिफ्ट के पास ले जाने लगा। लिफ्ट के पास आते ही आर्या ने आरव के हाथ पर टेप करके कहा, डैड मुझे भूख लगी है। हाँ और मुझे भी, सोने से पहले मॉम ने हमें चॉकलेट्स और बिस्किट्स दिए थे पर फिर भी वापस भूख लग गई, आरिशा ने अपने पेट पर हाथ लगाकर कहा। आरव का इस वक्त आयु के पास पहुंचना भी जरूरी था। उसने उन दोनों से कहा, मैं रास्ते में तुम दोनों को कुछ ले दूंगा। आरव दोनों बच्चों के साथ गाड़ी के पास पहुंचा। पहले उसने रास्ते में पड़ने वाले क्लाउड किचन से उन दोनों के लिए पिज्जा बनवा लिया था। आरव ने जब पिज्जा पिक किया और गाड़ी में उन दोनों को दिया तो आरिशा ने नामे सिर हिलाकर कहा, सॉरी डैड बट मैं जंक नहीं खाती, मुझे ये पसंद नहीं है और काफी अनहेल्दी भी है। क्या तुम पिज्जा नहीं खाती? पर ये तो मेरा फेवरेट है, आर्या ने हैरानी से कहा। मजबूरन आरव को वापस क्लाउड किचन में जाकर आरिशा के लिए सैंडविच बनवाने लगा। इस चक्कर में उसका काफी टाइम भी वेस्ट हो गया था। आरव ने आरिशा को सैंडविच देते हुए कहा, हेलो जूनियर आरव खुराना, तुमसे मिलकर खुशी हुई, चलो हमारी फैमिली में कोई तो ऐसा है जो मेरे जैसा है, बस अब तो यही उम्मीद कर सकता हूँ कि बड़ी होने के बाद तुम मेरी तरह सबका जीना हराम ना करो। आरिशा और आर्या को आरव की बातें समझ नहीं आ रही थीं, पर आर्या इतना जरूर समझ गया था कि आरिशा की हरकतें काफी हद तक आरव की तरह हैं। वो बिल्कुल उसी की तरह जिद्दी थी और उसे जंक खाना भी पसंद नहीं था। बच्चों को तैयार करने और उनके लिए खाना लेने के चक्कर में आरव को काफी देर हो गई थी, फिर भी वो आयु का साथ देने के लिए ओबेरॉय फार्म हाउस जा रहा था। वहीं दूसरी तरफ रुद्र के कॉल करने के लगभग डेढ़ घंटे बाद आयु ओबेरॉय फार्म हाउस पहुंची। उसने देखा ज्ञानजी उस वक्त गार्डन एरिया में थे और जयजी ताराजी के साथ उन्हें मनाने की कोशिश कर रहे थे, साथ में रुद्र और सिमरन भी थे। जैसे ही आयु अंदर आई रुद्र ने राहत की सांस ली और उससे कहा, थैंक गॉड तुम यहाँ पर आ गई हो, अब तुम ही समझाओ दादू को कि ये बचपना ना करें, कहाँ इतनी दूर अकेले जाएंगे, खामखा वहाँ प्रॉब्लम होगी। वहीं आयु को वहाँ पर देखकर ताराजी फिर से गुस्सा हो गई। उन्होंने रुद्र की तरफ देखकर पूछा, इस लड़की को तुमने बुलाया है यहाँ पर? रुद्र कुछ कहता उससे पहले आयु खुद ही जवाब में बोल पड़ी, हाँ इन्होंने बुलाया है और यहाँ मैं आपके लिए नहीं अपने दादू के लिए आई हूँ, उनके लिए मैं कहीं पर भी जा सकती हूँ, अब आपको आपके सवालों के जवाब मिल गए तो मुझे मेरे दादू से बात करने दीजिए। आयु ताराजी से उन्हीं की टोन में बात कर रही थी, वो भी उनसे बहुत गुस्सा थी क्योंकि जब आयु को जरूरत थी तब ताराजी ने उसे भला बुरा कहकर उसकी मदद नहीं की थी। आयु के इस तरह बेरुखी से जवाब देने पर ताराजी ने जयजी की तरफ देखकर कहा, देखा आपने इस लड़की को, ये हमेशा की तरह गलतियां करती है और ऊपर से मुझे ही सुना रही है। आयु ने तारा जी की बात के जवाब में कहा, आपको ही सुनाऊंगी ना, क्योंकि आपको मुझसे सबसे ज्यादा प्रॉब्लम है और डैड को भी। आपने हमेशा अनु से ज्यादा प्यार किया था, लेकिन मैंने कभी कुछ नहीं कहा, क्योंकि वो मेरी बहन थी और मैं उससे बहुत प्यार करती थी। उसके जाने के बाद आपने हर तरह से मुझे जिम्मेदार ठहराया कि मैंने उसे मारा है। ठीक है, हो गई होगी मुझसे ट्रॉमा में कोई गलती, तो क्या जान लेगी मेरी? मैंने भी बहुत कुछ झेला है। अकेले एक छोटी बच्ची को किसी माफिया से बचाकर लाना और फिर से लाइफ शुरू करना कोई मजाक की बात नहीं है। आज आयु ने ताराजी पर अपनी सारी भड़ास उतार दी थी। आयु की बातें सुनने के बाद ताराजी हैरानी से उसकी तरफ देख रही थी, जबकि ज्ञान जी के चेहरे पर हल्की मुस्कुराहट थी। उन्होंने आयु का कंधा सहलाकर कहा, बिल्कुल सही जवाब दिया है तुमने और इन्हें इसी जवाब की जरूरत थी। बोलते हुए उन्होंने ताराजी और जय जी की तरफ देखकर कहा, तुम लोगों के ताने देना हो गया हो तो मैं यहाँ से जा रहा हूँ। जय जी ने ज्ञान जी से कहा, हम बैठकर बात कर सकते हैं, अब आपकी उम्र हो गई है, आप अकेले क्यों रह रहे हैं? किसने कहा मैं अकेला हूँ? मेरे साथ आयु है, मेरी आरिशा है और हमारी एक परफेक्ट फैमिली है। अकेले तो तुम लोग हो, ज्ञान जी ने पूरे एटीट्यूड के साथ कहा। आप जिस आयु के दम पर सब कुछ छोड़कर जा रहे हैं, उसे अपना पति और बच्चा दोनों मिल गए हैं, ये आपके साथ कभी वापस नहीं जाएगी, ताराजी ने आयु को तिरछी निगाहों से देखते हुए कहा। एक पल के लिए वहां पर चुप्पी छा गई। ताराजी की बात भी सही थी, आरव और आर्या के मिलने के बाद आयु की लाइफ में सब कुछ सही हो गया था, तो आयु लंदन जाने के बजाय मुंबई जाने वाली थी। ज्ञान जी जो थोड़ी देर पहले उम्मीद के साथ वहां खड़े थे, उन्होंने फिर आयु के चेहरे की तरफ देखा तो अचानक उनके चेहरे पर निराशा के भाव आ गए। ऐसे लग रहा था जैसे वो जिंदगी में फिर से अकेले हो गए हों।